शांति। अभी अभी हम सब सुंदर गीत सुन रहे थे, दिव्य गुणों की गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। इससे सचमुच हम अनुभव करते हैं कि दिव्य गुण मानव जीवन का सच्चा श्रृंगार है। हरेक दिव्य गुण जीवन में अपना महत्व रखता है। जैसे अंतर्मुखता सर्व गुणों का फाउंडेशन है। जैसे कोई भी धरनी पर बीज बोते हैं, अगर धरनी फलीभूत नहीं होता है तो वो फल नहीं निकलता। तो अंतर्मुखता सर्व गुणों को जीवन में धारण करने के लिए एक धरनी बन जाती है। ऐसे ही सहनशीलता सर्व दैवी गुणों की चाबी है। अगर और दैवी गुण हमारे जीवन में हैं, सहनशीलता नहीं है, तो जैसे कि खजाना होते हुए चाबी हमने गुम कर दिया। इस प्रकार हरेक दैवी गुण अपना महत्व रखते हैं हमारे जीवन को महकाने में। परंतु आज शाम को हम विशेष संतुष्टता, जिसको हम कहते हैं सर्व गुणों का राजा, तो उसके बारे में कुछ एक बात हम समझेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि कोई राजा हो, ताज भी है तख्त भी है, परंतु उसके जीवन में संतुष्टता नहीं है, वो राजा नहीं है। अभी भले हम उस प्रकार से ताज तख्त पर नहीं बैठे हुए हैं, साधारण है, परंतु अगर हमारे जीवन में संतुष्टता है तो हम उस राजा से भी बड़े राजा हैं। इसलिए संतुष्टता को सर्व गुणों का राजा कहते हैं। जीवन में संतुष्टता आ जाती है तो बाकी सर्व दैवी गुण अपने आप ही जीवन में धारणा हो जाती। और हम कभी कभी सोचते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद, बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया है, इसलिए गीत गाते हैं ना, एक तू मिला तो सारी दुनिया मिल गई। अगर ये गीत हम दिल से गाते हैं तो हमको और कुछ चाहिए नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम सदैव भरपूर रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि संतुष्टता संगम युग की विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। संतुष्टता सबसे बड़ी दैवी गुण है। अगर हमने इसको जीवन में धारण नहीं किया तो जीवन नीरस हो जाएगा। कई बार हम पूछते हैं ब्राह्मणों से, आपको ब्राह्मण जीवन कैसा लगता है? इज इट ए प्लेजर और ए प्रेशर? तो हम क्या कहते हैं, मौजों का जीवन है या मूंझने का जीवन है? आप सब क्या कहेंगे? मौजों का जीवन है ना, इट्स अ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट प्लेजर। क्यों? क्योंकि इस जीवन में हमको सब कुछ प्राप्त है। तभी तो भक्ति में भी गायन करते हैं, अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। क्योंकि बाबा मिला माना हमको सर्व खजाने की चाबी मिल गई। आजकल तो लोग चाबी के पीछे ही दौड़ते हैं ना, चाबी चाहिए हमको, चाबी हाथ में है तो सब कुछ है। तो बाबा मिला माना सर्व खजानों की चाबी मिल गई, तो हमको और कुछ चाहिए की जरूरत ही नहीं। जैसे कोई के हाथ में बीज हो तो वो झाड़ के पत्ते पत्ते को थोड़ी मांगेंगे कुछ चाहिए, क्योंकि बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। तो यही बाबा ने लास्ट वीक अव्यक्त मुरली में कहा कि बाबा जब हमको अपना बच्चा बनाता है तो हर एक बच्चे को पूरा वर्षा देता है, चाहे वो कभी भी वो बाबा का बच्चा बने, 70 साल के हो या 30 साल के हो या 30 मास के हो, बाबा हर एक बच्चे को पूरा वर्षा देता है। परंतु लेने वाले कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट बता दिया कि पूरा वर्षा लेने का मतलब क्या है। हमको कैसे मालूम कि हमने बाबा से पूरा वर्षा लिया है? पूरे वर्षे में सब शक्ति आ जाती है, सर्व दैवी गुण आ जाता है और ज्ञान की हर पॉइंट आ जाती है। तो बाबा ने हम हरेक ब्राह्मणों को अपना पूरा वर्षा दे दिया है, सिर्फ हमको क्या करना है उसको स्मृति में रखना है। सिर्फ स्मृति में नहीं, बाप और वर्षे क्यों साकार बाबा में, साकार मुरलियों में बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि ईश्वर प्रभु कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आएंगी, बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि वर्षे की याद से संतुष्टता जीवन में कैसे आती है, क्योंकि वर्षे के अंदर सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको नहीं मिला हो। परंतु लेने वालों में नंबर वार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो हम बाबा से लेते हैं उसको अगर हम यूज करें, उसको कार्य में लगाएं, तो वो बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा और हमारा खजाना बढ़ते बढ़ते वी बिकम द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा ने लास्ट मुरली में कहा ना, आप ब्राह्मण आत्माएं विश्व में होलियस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो और रिचेस्ट भी हो। दादी जान के उसी दिन क्लास में बता रहे थे कि शुरू शुरू में भी जब यज्ञ चालू हुआ ओम मंडली में, तभी भी कहते हैं ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर कहने लगी ब्रह्मा कुमारी इज द रिचेस्ट, और भगवान ने अभी बता दिया कि हर ब्राह्मण भी रिचेस्ट है। रिचेस्ट का मतलब कि ऐसा कोई भी खजाना नहीं जो मुझे अप्राप्त हो, सब कुछ भगवान ने दे दिया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ हमको इतना भी अकल नहीं था भक्ति मार्ग में कि भगवान से क्या मांगना है, था हमको अकल? हम तो इतना कहते थे भगवान हमको एक बूंद की प्यासी है, प्यार का सागर हो तुम, हमको एक बूंद की प्यासी है, बूंद दे दो बस। हम तो इतने मांगते थे कि आप हमको अपने चरणों का धूल बना दो। परंतु भगवान ने हमको क्या किया, सागर दे दिया। हम तो पांव के धूल बनना चाहते थे, सिरताज बना दिया। क्या गाते थे, दर्शन दो गन शाम मुझे अखिया प्यासे रे, बस एक सेकंड का दर्शन चाहिए। तो अभी बाबा ने क्या किया, अपने नयनों के नूर बना दिया, नयनों में समा दिया। तो यानी जितना हम चाहते थे उससे बढ़कर, यानी हजार गुना बढ़कर के बाबा ने हमको प्राप्ति करा दी, तो हम क्यों संतुष्ट न रहे? कोई ऐसा चीज है, ऐसी कोई बात है जो बाबा ने नहीं सुनाया हो? बाबा को हम बच्चों के ऊपर इतना विश्वास है जो सारी दुनिया नहीं जानती है, वो बात बाबा हम बच्चों को सुना देता। तो सिर्फ बात ये होती है कि हम स्मृति में नहीं रखते तो जीवन में विस्मृत हो जाते। और विस्मृत भी क्यों होते हैं? प्राप्ति की कारण हम एक दो से भेंट करते, उसको क्या मिला है, मुझे क्या मिली है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है। तो जब तक ब्राह्मणों के अंदर ये भेंट कंपेयर करने की आदत को खत्म नहीं किया है, तब तक हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमको ऐसा लगता कि हम भिखारी है नहीं हमारे पास। परंतु वास्तव में सबको बाबा ने भरपूर किया है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि सबसे पहले हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को भरपूर महसूस करें, एकदम सब कुछ मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए। जब तक भरपूर नहीं है तब तक तृप्ति नहीं हो सकती। जैसे आप समझो, आपको पेट अभी भूख लग रही है, आपको खाना चाहिए, तो जितना आप खा सकते हो खा लिया तो भरपूर हो गया ना पेट, तो आप क्या कहेंगे? हम तो अभी तृप्त है। जब तक पेट खाली है तो तृप्ति कैसे होंगी? तो क्यों हम भरपूर महसूस क्यों नहीं करते हैं? इसका एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि बाबा से तो हम लेते हैं और जानते भी हैं कि बाबा सब कुछ देता है, दे रहा है, परंतु साथ साथ में ये भूल कर देते कि दूसरे आत्माओं से भी लेने की इच्छा रखते हैं। इससे भी थोड़ा मान मिल जाए, इससे भी थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, ये भी हमको थोड़ा प्यार दे दे। तो वो जो इच्छा रखते हैं ना लोगों से, दूसरी आत्माओं से लेने की, तो हम खाली ही रह जाते। कारण क्या? क्योंकि आत्माओं में ये आदत है, एक देना और दस लेना। तो देंगे एक, आपसे 10% ले लेंगे, तो आप तो खाली रह जाएंगे ना। तो पहले हम अपने को ऐसा हम फील करें कि भरपूर, तो उसके लिए ये युक्ति हम यूज करना चाहिए, एक से लेना है और सबको देना है। एक से लेना है, देने वाला एक ही है, दाता एक ही है। अगर आपको किसी से भी कुछ भी मिलता है ना, वो भी वही मिलता है जो उन्होंने बाबा से ली हुई है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट बाबा से लें? सो संतुष्टता के पहले तृप्ति चाहिए और तृप्ति के पहले भरपूरता चाहिए। और भरपूर सदैव रहने के लिए यही स्लोगन हम सदैव याद रखें कि एक से लेना है और सबको देना है। तो कभी भी फिर हमारा मुख से किसी के लिए कभी कंप्लेंट नहीं निकलेगा। अभी तो देखो, हम आपस में बात करते हैं या बड़ों से बात करते हैं तो क्या बातचीत करते? कंप्लेंट की, उलाना देने की, इसने मेरे को प्यार नहीं दिया, इसने हमारा अपमान कर लिया, इसने मुझे सहयोग नहीं दिया, तो इच्छा है ना। तो संतुष्टता का सच्चा अर्थ क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। सत्युग में तो देवताओं के खजाने में सब कुछ प्राप्त होंगे, परंतु देवताओं को मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ है। संगम युगी जीवन में हमको उस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे प्राप्ति स्वरूप की स्थिति, क्योंकि इच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि सब कुछ है इसलिए इच्छा भी क्यों करें। बाबा ने एक बार कहा था ना, इच्छा अच्छा को खत्म कर देता है, अच्छा के बदले आत्मा को सोचता में ले जाते हैं, क्योंकि जिसके अंदर असंतुष्टता है उसके मन में यही मंत्र चलता रहता है, चाहिए चाहिए चाहिए। और ये लॉ है ड्रामा के अंदर, जब तक हमने इस मंत्र को खत्म नहीं किया है चाहिए, तब तक मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। जब हम इसको खत्म कर देंगे तो हमको वो प्राप्ति हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ, अपने को हम भरपूर रखें और गिनती करें कि बाबा ने क्या क्या प्राप्ति कराई है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सखा के रूप में, सद्गुरु के रूप में, एक एक संबंध की प्राप्ति आप सोचिए, एक एक सब्जेक्ट में ज्ञान से क्या प्राप्ति है, योग से क्या, धारणा से। तो अगर इसके बारे में आपका मनन चिंतन चलेगा तो आपकी जो प्राप्ति है वो मर्ज हो जाएगा। अभी तो क्या है, इमर्ज है, इमर्ज नहीं है, मर्ज हो गया है। तो उसको हमको बाहर निकालना है। तो जब भरपूर हो जाएंगे तो भरपूर की निशानी ये होंगे, तो कभी वो हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे। तभी बाबा ने कहा ना, संतुष्ट आत्मा की ये निशानी है, वो बेफिक्र बादशाह। अभी ही निश्चिंत अवस्था का उसके जीवन में अनुभव होगा, चिंता है नहीं, चाहिए कुछ नहीं। और दूसरा कि जब हम भरपूर रहेंगे तो हमारी जो रॉयल्टी है, आज भी आप देखेंगे ना, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसके फेस से, उसकी चलन से, उसकी बिहेवियर से मालूम पड़ता है कि उसकी नजर कहाँ नहीं जाते हैं, वो भरपूर है। तो हमारे अंदर भी वो रॉयल्टी आ जाएंगे। उसके बाद है तृप्ति, बस हम तृप्त आत्मा हो जाएंगे भरपूरता के आधार से। और तृप्त आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, वो तृप्ति फिर हमारे जीवन में संतुष्टता लाती है। और वो संतुष्ट आत्मा जो होंगे वो ही सदा खुशी में रह सकते। हम ये भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, कौन सी बात पहले आती है, संतुष्टता या खुशी, आप क्या कहेंगे? पहले संतुष्टता ना। अगर हम जीवन में संतुष्ट नहीं हैं तो खुश कैसे रहेंगे? और जो सदैव संतुष्ट रहते हैं उसकी निशानी है उसका मुख सदैव हर्षित रहेगा, उसका चित्त में कोई भी प्रश्न नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ना, प्रसन्न चित्त ही संतुष्ट आत्मा है। अगर हमारे मन में प्रश्न है, क्यों, क्या, कैसे, कब, वो प्रश्न हमको संतुष्ट रहने नहीं देता। और वो प्रश्न भी मन में इसलिए उठता है क्योंकि हमने बाबा से ज्ञान का वर्षा पूरा नहीं लिया है। अगर ड्रामा के नॉलेज का नॉलेजफुल हम बन गए होते तो हमारे मन में प्रश्न नहीं आता, हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ चल रहा है सेकेंड बाय सेकेंड उसमें कल्याण भरा हुआ है। इसलिए बाबा ने ये अच्छा स्लोगन दिया है ना, संतुष्ट रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए, अब तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा, अब जो हो रहा है वर्तमान समय वो बहुत अच्छा। अगर आपसे कोई पूछे कल क्या होने वाला है, आप बता सकेंगे? आप में से किसको मालूम है कल क्या होने वाला है, हाथ उठाइए। बहुत थोड़ों को मालूम है। आपका नाम क्या है? त्रिकालदर्शी। आप सोचिए, नाम है त्रिकालदर्शी, माना तीनों कालों को जानने वाले, भूत भविष्य और वर्तमान, और आप कह रहे हैं कि कल क्या होने वाला है वो पता ही नहीं, तो आप अपना टाइटल वापस दे देना। हाँ, बाबा ने तो हमको त्रिकालदर्शी बना दिया ना, तो अगर कोई पूछे कल क्या होने वाला है तो हम तो कहेंगे हमको मालूम है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। हाँ, आप सबको विश्वास है? हाँ, ऐसा तो नहीं है पता नहीं क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर संशय बुद्धि कैसे खुश रहेंगे? तो इसलिए सदैव हर्षित रहना है, सदैव खुश रहना है, तो ये स्लोगन हम दिल के ऊपर रख दें, ये विश्वास हम अपने मन में बना के रखें कि संगम युगी जीवन में बुरा हो नहीं सकता, अच्छा ही अच्छा है, तो फिर हम क्यों नहीं संतुष्ट रहे? तो संतुष्टता का अर्थ ये नहीं है कि जब हमको सब कुछ मिले जो मुझे चाहिए, आसमान का तारा भी चाहिए, चांद भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ मिल जाए तब मैं संतुष्ट रहूं, नहीं। भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, दादी जानकी कई बार कहते ना, जेब खाली और सफेद कपड़ा, हम है मतवाली, वरना हमारे पास कुछ नहीं है परंतु हमारे पास सब कुछ है, वरना ऐसा हम नहीं समझे कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत पोजीशन हो, बहुत नाम मान हो तब हम संतुष्ट है, नहीं। वास्तव में संतुष्टता मन की बात है, तो मन में हम ऐसी तृप्ति चाहिए, मन में हम भरपूर रहे कि मुझे जो कुछ मिलना है अपने कर्मों के अनुसार वो मुझे मिल रहा है और मिलना ही वाला है, ये हम पक्का रख देवे मन में, हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता। एक गीत है ना, समय के पहले भाग्य से ज्यादा कोई किसी को मिलने वाला नहीं है, तो क्यों हम दूसरों से भेंट करके अपने को असंतुष्ट करें? हर एक अपना अपना कर्मों के अनुसार फल भोग रहे हैं। अगर हम किसी को देखते हैं ये बहुत खुश रहते हैं, ये बहुत संतुष्ट रहते हैं, तो हम अपने अंदर ईर्ष्या नहीं करें कि कोशिश करें कि उस खुशी को कैसे कम करें, ऐसा नहीं, परंतु हम अपनी खुशी को भी कम न करें, क्योंकि हम जानते हैं हमको भी अपने कर्मों के अनुसार जो कुछ मिलना है वो मिल रहा है। तो अगर ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं ना, तो कभी जीवन में असंतुष्ट नहीं होंगे, और जो कुछ हमारे पास है उसको यूज करें, इसमें ही फर्क पड़ जाते है। सबके पास सब कुछ नहीं है, कुछ तो है, बाबा ने तो सबको वर्षा दिया है, परंतु कोई उसको यूज करते हैं ना, जैसे बाबा कहते ना कि लौकिक बाप को भी दो प्रकार के बच्चे होते हैं, सपूत और कपूत। सपूत बच्चे क्या करते हैं, बाप वर्षा देते हैं उसको इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हैं, और कपूत बच्चा क्या करता है, खा पी के उसको खत्म कर देता। तो हमको क्या करना है, बाबा जो वर्षा दिया है उसको यूज करें, कार्य में लगाएं। जितना हम यूज करेंगे वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ती हुई खजाने को देख करके हमको सदैव खुशी बढ़ेंगे। आज भी मोहिनी बहन क्लास में सुना रहे थे, डबल विदेशियों के क्लास में, कैसे कोई दुकानदार होते ना, जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस होता है उसको कभी झुटका नहीं आएगा, रात भी हो जाए तो भी झुटका नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ग्राहक बहुत है, उसको कमाई हो रहा है, तो कमाई में खुशी होती है, वो संतुष्टता लाता है। तो हम भी अपने अंदर कमाई करने का शौक रखें। हमारी कमाई किस में है, हमारी कमाई पढ़ाई में है, पढ़ाई ही हमारी कमाई है। तो जिसके अंदर पढ़ाई का शौक होता है उसके जीवन में कमाई होती जाती है। बाबा कहते ना, आप बच्चों का कदम कदम में पदम है। इसका मतलब क्या कि माना संगम युग को ये वरदान मिला हुआ है कि एक का दस गुना हजार गुना फल, क्योंकि संगम युग बीज बोने का टाइम है, तो अगर हम समय पर बीज बो लिया तो उसका फल हमको हजार गुना मिल जाता। तो इसलिए अगर हमको संतुष्ट रहना है तो समय की पहचान और स्वयं की अनुभूति, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, यही दो चीज चाहिए, आत्मा की रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और समय की पहचान। जिसके अंदर ये दो बातें हैं वो कभी भी समय को गवाएंगे नहीं, और समय को सफल करने के कारण उसको सबसे दुआएं मिलती है, वो दुआएं उसको संतुष्ट रखते। दुआएं मांगने से नहीं मिलेगा, संतुष्ट जो रहते हैं वो संतुष्ट क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सफल करते हैं। जिसको सफल करने की कला है वो सदैव संतुष्ट रहेंगे, और सफल करने के कारण दूसरी आत्माओं से जो दुआएं मिलती है वो उनके जीवन में एक विमान का काम करता है। बाबा ने कहा ना, उनको सदैव मूर्ति कला में उड़ने का अनुभव कराते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमको याद है दादी गुलसार लास्ट टाइम क्लास में बता रहे थे, एक बारी दादी ने किससे पूछा था आप कैसे हो, तो उस भाई ने दादी को कहा कि हम चल रहे हैं। तो दादी ने कहा अरे अभी तो चलने का टाइम नहीं है, अभी तो उड़ने का टाइम है। क्योंकि चलने का टाइम तो चला गया ना, पर उड़ेगा कौन, जिसके बुद्धि रूपी झोली में इतना वरदान भरा हुआ हो दुआएं। तो संतुष्ट आत्मा सर्व के दुआओं का पात्र बनते, क्योंकि उसकी जीवन में कोई भी चाहना नहीं है, और संतुष्ट होने के कारण वो दाता देता ही रहता है, और जितना देते हैं ना उतना ऑटोमेटिकली उनको मिलता रहता है। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा जो है वो सदैव अपने को ऐसे अनुभव करते हैं कि जैसे कि आराम में है, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी भय नहीं। सत्युग में तो हम आराम से रहेंगे, परंतु अभी कोई बेचैनी नहीं। चाहिए चाहिए जो असंतुष्टता है वो बेचैनी का अनुभव कराते। तो इसलिए मैं तो फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हम कभी भी किसी आत्मा से भेंट न करें, अपने को देखें और बाबा को देखें, और जो मुझे मिला है उसको हम अप्रिशिएट करें। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ, बाबा ने हमको अपना सारा वर्षा, अपनी सारी प्रॉपर्टी अधिकार के रूप में मुझे दिया है। तो आप अपने को जो मिला है ना उसको गिनती कीजिए, 10 अंगुली है ना, अगर आप इतना भी काम करेंगे एक एक अंगुली में, एक से जो बात है उसको गिनती कीजिए, फिर दो दो, फिर तीन तीन, तो ऐसे करते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कितनी खजाने हैं। पर सिर्फ खजाने तो है, परंतु बुद्धि रूपी झोली में सोराख नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना, बुद्धि में हम भर देते हैं खजाना, परंतु अचानक पता नहीं कहाँ चले गए सब कुछ, वो सोराख से बह गया। वो सोराख कौन सी, कभी सोराख भी नहीं होता है, थोड़ी सी क्रैक होती है। तो बुद्धि में सोराख भी नहीं हो और बुद्धि में कोई क्रैक भी नहीं हो, ताकि वो जो भरा हुआ है खजाना वो बह न जाए। सोराख होता है संशय, जब संशय बुद्धि होता है ना तो ऑटोमेटिकली जो मिला है उसको न देख करके उसके बारे में संशय आ जाता है, मैं लायक नहीं हूँ, शायद मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, बाबा को मैं इतना पसंद नहीं आती हूँ, ऐसे ऐसे उल्टा संकल्प चलता है। तो क्या हो जाएगा, जो भरा हुआ है वो खाली हो जाते हैं। और क्रैक क्या होता है, संशय नहीं आता है, परंतु हम दूसरी आत्माओं का प्रभाव हम अपनी बुद्धि के ऊपर प्रभावित होने देते, चाहे वो अच्छा संस्कार है या बुरा संस्कार, वो प्रभावित जो इन्फ्लुएंस है ना, वो इतना सूक्ष्म होता है समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हमको, अगर हमको सदैव संतुष्ट रहना है तो हम सदैव अपनी बुद्धि रूपी झोली को एकदम ऐसा मजबूत रखें, कोई सोराख भी ना हो, कोई क्रैक भी ना हो, ताकि जो भरता जाता है न सिर्फ भरपूर, दादी कहती है ना कि ओवरफ्लोइंग होना चाहिए। वर्तमान समय बाप दादा हम सबको यही प्रेरणा देते हैं, दातापन का संस्कार हमको चाहिए। हम देवता बन रहे हैं ना, देवता का मतलब क्या है? दाता। देगा कौन? जिसके पास ज्यादा है, भरपूर से भी ज्यादा है। तो इसलिए कमी कुछ नहीं है, सिर्फ हमको मिला है ना उसकी स्मृति स्वरूप की स्थिति बना के रखे। बाबा ने यही इशारा दिया है, हम स्मृति रखते हैं परंतु स्मृति स्वरूप नहीं है। अगर हम सभी जो मिला हुआ खजाना है उसकी स्मृति स्वरूप बन करके रहे, तो मैं समझती हूँ कभी हमको ये फीलिंग नहीं आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा ही लगेगा कि बाबा ने हमको, हमने जो मांगा उससे ज्यादा दे दिया है, कि बाबा हमको पता नहीं मैं कहाँ रखूं, इतना ज्यादा दे दिया है आपने। बस बाबा के लिए हमारे दिल से शुक्रिया अदा निकलेगा, हम कभी मांगेंगे नहीं। बाबा कहते ना कभी बेगर का संस्कार तो होना ही नहीं चाहिए, पर रॉयल बेगर भी नहीं बनना है। तो हमको तो दातापन का संस्कार, जो संतुष्ट आत्मा होंगे इसलिए भक्ति मार्ग में भी वो इष्ट बनते हैं और सत्युग में भी वो अष्ट में आते हैं। इसलिए पास विद ऑनर होने के लिए, आठ रत्नों में आने के लिए संतुष्टता बहुत जरूरी है। इसलिए संतुष्ट आत्मा को दूसरे शब्दों में कहते हैं वरदानी आत्मा। माना महादान तो हम करते हैं, परंतु वरदान का मतलब कि जो भी हमारे सामने आए उनको जो चाहिए बिना बोले उसको प्राप्त हो जाए, तभी वो आपको दाता के नजर से देखेंगे। तो इसलिए भविष्य में तो हमको सब कुछ प्राप्ति होगा, इसलिए वहाँ कोई इच्छा नहीं, परंतु वो संस्कार अभी हमको अपने जीवन में धारण करना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या होती है वो शब्द की अविद्या हो जाए, उसके बदले हमारे अंदर ये धारणा आ जाए सब कुछ है, सब कुछ है, पालिया पालिया। यही गीत हमारे अंदर बजता रहे तो ऑटोमेटिकली उसके आधार से हमारी खुशी कभी कोई छीन नहीं सकते। तो एक होता है संतुष्टता को गुण के रूप में धारण करना, और दूसरी बात बाबा चाहते कि हम हर एक संतुष्ट मणि बने, सिर्फ संतुष्ट नहीं संतुष्ट मणियां बने, क्योंकि संतुष्ट मणि जो बनेंगे वो जैसे कि ज्ञान सूर्य के समान उसकी चमक चारों तरफ फैलेगा। तो संतुष्ट मणि बनने का मतलब क्या है कि तीनों प्रकार की संतुष्टता हमारे जीवन में चाहिए। सिर्फ हम कहे नहीं मैं संतुष्ट हूँ, परंतु दूसरे भी कहे, मुझे सर्टिफिकेट दे कि ये सदैव संतुष्ट है, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। तो तीन प्रकार की सर्टिफिकेट हमको लेना है, तभी हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। एक तो अपने आप से संतुष्ट, दूसरा बाबा हमारे से संतुष्ट, और परिवार हमारे से संतुष्ट, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय। तो बाबा को हम यही संतुष्ट मणि बनकर के बाबा के सामने बैठे कि यही हमारा सौगात बाबा के लिए हरेक संतुष्ट मणि बन करके। तो माना अपने आप से संतुष्ट रहने के लिए मुझे क्या करना है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, आप अपने आप से संतुष्ट हो, आप में से कितने कहेंगे आप अपने आप से संतुष्ट हो, हाथ उठाइए। बहुत थोड़े हैं। ऐसा नहीं उठाना भी दूसरे उठा रहे हैं, मैं भी उठा दूं। दिल से बाबा ने ये भी बता दिया ना, एक होता है दिल से संतुष्ट, दूसरा होता है दिमाग से संतुष्ट। आप अपने आप से पूछना कि अगर आप अपने आप से संतुष्ट है तो दिल से है या दिमाग से। अगर दिल से संतुष्ट है तो दूसरे को कहना चाहिए कि ये संतुष्ट आत्मा है। अगर दिमाग से हम कह देंगे, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए एक स्लोगन हम सदैव याद रखें, ये अव्यक्त बाप दादा का ही महावाक्य है। अपने आप से सदैव संतुष्ट रहने के लिए हम सदैव श्रीमत के अनुसार चले, मनमत और परमत की अविद्या हो। क्योंकि मनमत और परमत हमको असंतुष्टता लाता है। क्योंकि कोई काम करने के बाद, कुछ कहने के बाद दिल खाती है, तो जब दिल खाता है ना, तो समझ जाना चाहिए गलत है। तो अगर आपको समझना है कि मैं श्रीमत पर चलती हूँ या नहीं, उसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हो। आप बाबा के सामने जाके बैठ जाइए, बाबा के ट्रांसलेट के सामने, बाबा के फोटो के सामने आप अपने मन को एकदम शांत रखना, तो आपको बाबा उसी समय आईने के रूप में काम करेगा। तो बाबा आईने में स्पष्ट दिखाई देगा कि आप मनमत पर है या परमत पर है या श्रीमत पर है। तो उसी समय अगर हमने मान करके अपने को परिवर्तन कर लिया, तो हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते। दूसरी बात, बाबा को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा तो बोला नाथ है, वो तो ज्यादा नहीं मांगते हमारे से। उसके लिए तो बहुत सहज विधि है, सच्चाई सफाई। इसलिए कहावत है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हम अपने आप से पूछे कि क्या हम सच्चाई सफाई से बाबा के साथ चलते हैं। कोई बात छिपी हुई तो नहीं है। अगर पहले कौन सी बात चाहिए, सफाई चाहिए या सच्चाई चाहिए, ये भी अपने आप को देखना है। क्योंकि हम तो कह देते सच्चाई सफाई, जब सफाई नहीं है तो सच्चाई कहाँ से आएंगे। तो जब बुद्धि क्लीन नहीं है तो क्लियर नहीं हो सकता है ना। तो पहले बुद्धि को क्लीन करना है, और क्लीन कैसे करेंगे, ज्ञान के दर्पण में अपने को देखना है। जो रोज ज्ञान के दर्पण में अपने को देखता है, उसको अपने दाग दिखाई देता है, उसको साफ कर दिया तो दर्पण क्लियर हो जाएगा, उसको कहते हैं सच्चाई। तो दिल की सच्चाई सफाई भगवान को प्यारा लगता है। बाबा ने एक बार कहा ना, दिमाग वाले नहीं चाहिए, दिल वाले चाहिए, क्योंकि बाबा दिल वाला है। तो अगर बाबा से सर्टिफिकेट लेना है तो यही हमको धारणा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है परिवार से संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेना। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए एक ही छोटी सी धारणा चाहिए। हरेक के दिल को जीतना है, हरेक की दिल में विराजमान होना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी दिल में जो आशय उसको पूरा करना पड़ेगा। जिसकी दिल की बात को आप पूरा कर देते वो संतुष्ट हो जाते, वो दुआई देंगे आपको। अगर हम सच्ची पूछे ना ब्राह्मणों के, हरेक के दिल में क्या इच्छा है, हरेक को मान चाहिए, शान चाहिए। तो यही स्लोगन हम धारणा करें कि गिव रेस्पेक्ट एंड रिसीव रेस्पेक्ट। सम्मान देना है और सम्मान लेना है। मुझे इच्छा नहीं रखना है कि मेरे को सम्मान मिले, परंतु मैं यही धारणा रखूं कि मैं सबको सम्मान करूं। वो तब कर सकते जब हम अपने स्वमान में रहेंगे। आज भी बाबा के स्लोगन था ना, याद है आज का क्या स्लोगन था? जो सदैव सम्मान की स्वमान की सीट पर रहेंगे उसको कभी भी किसी की इंसल्ट फील नहीं होगा, कोई अपमान करे उसको लगेगा नहीं, क्योंकि अपने स्वमान में है। तो इसलिए अगर हमको परिवार से ये सर्टिफिकेट लेना है तो यही बातें हमको चाहिए, हर एक को हम सम्मान देते रहे। एक बार दादी जानकी ने कहा था कि ब्राह्मण है ना बहुत कंजूस है सम्मान देने में, थोड़ा देते हैं, कोई कोई को देते हैं, जल्दी थक जाते हैं। तो दादी ने हम लोगों का इशारा दिया था, दादी ने कहा कि इसमें बड़ी दिल रखो, बाबा ने दिया है ना बहुत सम्मान दिया है, आप बैठ करके टाइटल निकालो ना, जो टाइटल बाबा ने स्वमान का दिया है कितनी लंबी टाइटल है। तो बाबा ने जो सम्मान दे दिया मुझे तो हम क्यों नहीं बड़ी दिल रखें। तो हर एक आत्मा को सम्मान देते रहे, माना अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट। तो उसमें क्या हो जाता है, उस आत्मा को, दिल को खुशी होती है ना, तो वो दिल की खुशी आपके पास दुआओं के रूप में आ जाती है। तो आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपको उड़ती कला का अनुभव होंगी। तो इसलिए ये धारणा जरूर चाहिए, परंतु अपने तरफ से मुझे कोई दे वो इच्छा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि हम दूसरों को सम्मान देते हैं इस इच्छा से वो भी मुझे देंगे, परंतु कई बार टेस्ट भी तो आता है ना, हम 10 बारी भी उसको सम्मान देंगे वो 1 बारी भी हमको देंगे नहीं, तो फिर हमारे अंदर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हमने तुमको कितना बार सम्मान दिया, तुमने हमको कितना बार दिया। तो बिजनेसमैन बन जाते हैं तो उसमें हमारी खुशी कम हो जाती। तो इसमें हम ये धारणा रखें तो हरेक के दिल से ये सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट माना लिखत में नहीं, परंतु दिल की खुशी आपके लिए, उस आत्मा को आपके लिए शुभ भावना, आपके लिए सदैव अच्छी भावना उसके मन में बनी रहेंगे। पर यही चाहिए ना हमको, हम क्या चाहते हैं, हरेक के दिल से दुआ चाहते हैं ना। अगर हमको मालूम पड़े कि किसी ने हमको बददुआ दी, श्राप दिया, तो हमको कैसा लगता, दुख होता है ना। तो हम भी सोचे कि हम किसी आत्मा के प्रति हम कैसे सोच रहे हैं। तो जो चाहते हैं दूसरे हमको दे, पहले हम दें, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आपको प्यार चाहिए तो पहले आप दीजिए, आपको सम्मान चाहिए तो पहले आप मान दीजिए, सहयोग चाहिए तो पहले आप सहयोग दीजिए, क्योंकि ये एक लॉ है, कर्मा की लॉ है, एक्शन रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट। तो अगर ये 3 धारणा अगर हम जीवन में पक्की रखेंगे, न सिर्फ हम संतुष्ट आत्मा बनते हैं परंतु हम संतुष्ट मणि बन जाएंगे। जो संतुष्ट मणि बनते हैं सत्य संगम युग में, वो ही वैजयंती माला में मणका बन सकते। वैजयंती माला में कौन आएगा, जो संगम युग में संतुष्ट मणि होंगी। सो संतुष्ट मणि बनना माना पास विद ऑनर होना, उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्ति नहीं, इसलिए वो सबको संतुष्ट करते हैं और सब उनसे संतुष्ट रहते हैं। एक बारी बाबा ने ये भी कहा था कि चलो 95% आत्माएं संतुष्ट है, 5% नहीं है, कोई ना कोई कारण से, कुछ कर्मों के हिसाब किताब, तो भी भले वो आत्मा असंतुष्ट है वो आपके ऊपर दोष नहीं देंगे, इसने मुझे असंतुष्ट किया ऐसे नहीं कहेंगे, वो खुद मानेंगे कि ये मेरी कमी है, मेरे अंदर असंतुष्ट रहने का संस्कार है, ऐसा होता है ना, किसी किसी का संस्कार सब कुछ होते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे कि कुछ नहीं है, तो वो मानेंगे कि ये मेरा संस्कार है असंतुष्ट रहने का, आपने हमको असंतुष्ट नहीं किया, तो मानो वो भी संतुष्टता के मार्क्स में गिना जाएगा। तो इसलिए संतुष्टता का इतना महत्व है कि जो संतुष्ट आत्मा होंगे वही वास्तव में पास विथ ऑनर हो सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई भी दाग नहीं। बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, संतुष्ट आत्मा बनना माना बेदागी आत्मा, कोई भी फ्लॉ नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। तीन बात है ना, कमी, कमजोरी और खामी। इसमें क्या फर्क है? एक होता है वीकनेस नो, तो वीकनेस माना हम समझते हैं कि समझो हमारे अंदर धीरता का गुण है, पेशेंस है, परंतु साथ साथ में या हमारे अंदर एक्यूरेसी है, पर दूसरे जब कोई एक्यूरेट नहीं होते ना हम बिगड़ जाते हैं, तो यह हमारी वीकनेस हो गए ना। विशेषता तो है पर उसके साथ हमारी कमजोरी भी है, वो बार बार हमको तंग करेगा। खामी जो होती है ना वो अपने स्वभाव के साथ संबंध रखता है, क्योंकि कई बार हमारे अंदर ऐसे आदतें होती है तो हम जानते हुए भी उसको चलाते रहते, वो हमारी खामी। और जो उसको डिफेक्ट कहते हैं ना, जैसे हीरे में डिफेक्ट होता है वो दिखाई नहीं देता, परंतु डिफेक्ट होगा तो वो हीरे की वैल्यू नहीं होता। तो इसलिए हमको हरेक को बाबा ने दिव्य बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, तो उसमें हमको देखना है कि हमारे में क्या कमी है, क्या खामी है और क्या कमजोरी है। कमजोरी का मतलब कि वीकनेस, जैसे जल्दी जल्दी रोना, सेंसिटिव बनना, कोमल दिल रखना, छोटी बातों में नाराज हो जाना, ये कमजोरी है। वो कमजोरी इसलिए आती है क्योंकि ज्ञान की ताकत नहीं है। जैसे नहीं शरीर की किसी की कमजोरी होती है, विटामिन्स की कमी है, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि आप विटामिन्स बी जास्ती लो, विटामिन सी लो, ये विटामिन्स आपकी बॉडी में कम है। तो हमारे अंदर भी कोई ना कोई ज्ञान की विटामिन्स की कमी है, तो उसके कारण कमजोरी है। तो कमजोरी को ज्यादा समय रखेंगे तो वो कमी बन जाएगा, और कमी को ज्यादा समय रखेंगे तो वो खामी बन जाएगा। तो इसलिए संतुष्ट आत्मा बनना हो तो ना कमी हो, ना कमजोरी हो, ना खामी हो, तभी हमारे जो दिव्य गुण है ना वो जैसे कि खुशबू, उसकी खुशबू न सिर्फ हमारे तक सीमित रहेगा, परंतु वो खुशबू दूर दूर तक फैलेगा। जैसे कोई भी खुशबूदार फूल होता है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ ये फूल रखा है, उसकी खुशबू आप ही सुनाता है दूसरों को। तो मेरे को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं सदैव खुश रहती हूँ, मेरे को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं संतुष्ट रहती हूँ, पर संतुष्टता की जो किरणें है ना, लाइट हाउस की तरह, माइट हाउस की तरह चारों तरफ फैलेगा। इसलिए संतुष्ट मणि कहते ना, जैसे हीरे को कहाँ भी फेंक दो उसकी चमक कभी छिपेगा नहीं, ऐसे संतुष्ट आत्मा इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए अपनी संतुष्टता की चमक से दूसरी आत्मा को परमात्मा की तरफ आकर्षण करेंगे। तो इसलिए हम पहले भरपूर रहे, फिर तृप्ति, फिर संतुष्ट, फिर खुशी, फिर सदा खुशी। बाबा कई बार पूछते ना आप सब खुश हो, तो हम सभी हाथ उठाते हैं, जब बाबा कहता है सदा तो हाथ नीचे हो जाता, क्योंकि सदा खुश नहीं रहते। कारण क्यों नहीं सदा खुश रहते? क्योंकि संतुष्ट नहीं है, तो हमारी नजर थोड़ा दूसरों की तरफ चली जाती है, हमारी नजर बीती हुई बातों में चली जाती है, हमारी बुद्धि औरों के तरफ अवगुणों के तरफ चली जाती है, परचिंतन में परदर्शन में, तो खुशी कब गुम हो जाती। तो इसलिए अगर हमको सदा खुश रहना है और मुस्कुराते रहना है, और क्या करना है भगवान के बच्चा बनने के बाद? रोना है क्या? बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जिसको कहते हंसने वाली दुनिया, और गीत भी गाते हैं किसी ने मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, परंतु आर्टिफिशियल मुस्कुराना नहीं। आजकल हम देखते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में भी दुकानों में वो बैज लगाते हैं सर विद स्माइल, और आर्टिफिशियल मुस्कुराते मुस्कुराते हुए सेवा करते हैं। वो नहीं, बाबा चाहते हैं रियल मुस्कुराहट। वो तब आएगा जब हमारी दिल में संतुष्टता होगी और हमारे मन में सदैव खुशी होगी। तो इसके लिए आज से लेकर अभी से लेकर आप अपने आप को अच्छी तरह से देखिए, कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी, कोई भी खामी आपकी संतुष्टता को भंग कर रहा है, वो आज रात को बाबा के सामने बैठ करके बाबा को समर्पण कर देना और बाबा को यही कहना कि बस आप मिले तो हमको सब कुछ मिल गया, हमको जीवन में असंतुष्टता का भी नाम निशान नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बाबा तो यही कहता ना, सिर्फ ये देखो ओके, बी के माना ओके, सिंगल ओके या डबल ओके, आपको कोई पूछे कुछ राजी हो डबल ओके या सिंगल ओके, आप में से कितने कहेंगे सिंगल ओके? हाथ उठाओ। सिंगल ओके कौन है? वाह, कोई नहीं है। डबल ओके कौन? सभी डबल ओके। इसका मतलब समझा क्या मतलब है? डबल ओके का मतलब क्या? ओ माना शिव बाबा, ओ, और के माना किंगडम। ओके कौन रहेगा? जो सदैव शिव बाबा को वर्षे को याद करते हैं। और डबल ओके का मतलब कि शरीर भी ठीक है और मन भी ठीक। ऐसे आप सभी सदा संतुष्ट मनिया बन करके खुशी का खुराक, खुशी का खजाना बांटते हुए, खुशी का खुराक अपने को खिलाते हुए आप भी खुश रहना और सबको खुशी बांटते रहना। ऐसे हम सब मिलकर के सुख की दुनिया को जल्दी हम इस धरा पर उतार सकते हैं। ओम शांति।